जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोधनंदन व्रज जनरंजना, यशोधनंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाय जय सुदर्शन, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिता जय गौरनिता, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव,
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निरंतराज श्रीमद्भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय क्रमांक 31 प्रचेताओं को नारद का उपदेश। श्लोक क्रमांक 7 ये श्लोक क्रमांक 7 इसलिए है कि क्योंकि कल संडे था तो संडे को हम जनरल क्लास देते हैं, तो राधेश्याम प्रभु ने ऑलरेडी इस श्लोक के ऊपर क्लास दिए हैं, तो इसके ऊपर फिर से मुझे क्लास देना मतलब बहुत बड़ा ये तपस्या है। फिर भी प्रभु जी का आदेश है कि आज उसी श्लोक के ऊपर क्लास देना है, ताकि आगे जो श्लोक जिन भक्तों को क्लास के लिए दिया गया उनको मतलब ये सेम उनको जो दिया गया उसी के ऊपर करना है, तो इसलिए आज हम प्रयास करते वही श्लोक के ऊपर दोहराएंगे। श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है, भगवान से अभिन्न है और नित्य नवीन है, तो भगवान के विशेष कृपा है, तो भगवान ये श्लोक के द्वारा हमें अपने साक्षात रूप को दर्शाते हैं। तो आज का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, तो हम श्लोक दोहराते हैं। तन्ना प्रद्योतयाध्यात्मा ज्ञानं तत्त्वार्थदर्शनम्। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले हम सभी भक्तों का आशीर्वाद का याचना करना चाहते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ पर सवाल ये किया है कि गुरु के प्रति आसक्ति कैसे बढ़ाना है। हरे कृष्ण। तो गुरु के प्रति आसक्ति कैसे बढ़ाना है, तो दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि आपने आपके गुरु के प्रति आसक्ति कैसे बढ़ाया है। तो पहले बात तो ये है कि मैंने मेरे गुरु के प्रति आसक्ति अभी तक शुरू भी नहीं किया है, तो ये क्योंकि महाराज का ये विशेष कृपा।
पाशम आत्मना कवयो विधु साएव साधु शुक्रतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो ये इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। जो आसक्ति होता है तो आसक्ति को हम काट नहीं सकते या मार नहीं सकते हैं। आसक्ति रहेगा ही, क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, तो कई बार ऐसा हम स्टेटमेंट सुनते हैं कि आसक्ति को खत्म करना चाहिए या डिजायरलेसनेस, तो आशा रहित होना चाहिए। तो जीवात्मा को ये आशा रहित होना या आसक्ति के बिना रह नहीं सकता है, क्योंकि ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन ही ऐसा है, तो किसी ना किसी के प्रति वो आसक्त रहना ही होता है। तो इस भौतिक जगत में कोई व्यक्ति अपने पति पत्नी के प्रति आसक्त रहता है, पत्नी पति के प्रति आसक्त है, पति पत्नी मिलके बच्चों के प्रति आसक्त रहता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर ऐसा कोई आसक्त नहीं है तो वो लोग कुत्ते को घर में लेके आते हैं उसके प्रति आसक्ति डाल देते हैं, या कोई बिल्ली है ऐसा कोई एनिमल्स के प्रति अपना आसक्ति को लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो प्रोपेंसिटी है अटैचमेंट रहना, उसको हम बंद नहीं कर सकते हैं। तो शास्त्र में बताया कि दो प्रकार की आसक्ति है, एक आसक्ति है जो बंधन में लेके आता है और दूसरा आसक्ति है वो मुक्ति का द्वार को खोल देता है। ऐसे दो प्रकार के आसक्ति के बारे में बताते हैं। तो ये जो आसक्ति को काट नहीं सकते, मार नहीं सकते, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, उसको केवल प्रभुपाद जी बोलते सिंपली टू बी ट्रांसफर्ड और प्योरीफाई। तो ये आसक्ति को हमको ट्रांसफर करना चाहिए। जो आसक्ति हम भौतिक संघ में रखते हैं, तो भौतिक आसक्ति या घर घर के लोगों के प्रति आसक्ति है, नहीं तो लैंड के प्रति आसक्ति है, कुछ प्रॉपर्टी के प्रति आसक्ति है, धन के प्रति आसक्ति है, उसी आसक्ति को अगर हम एक भगवान के प्रति या भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति लगा देते हैं, तो यही जो आसक्ति जो बंधन में लाने वाला चीज है वो हमें मोक्ष द्वार को खोलने वाला होता है। तो ये जो बताते हैं यहां पर, जो प्लेटफॉर्म ऑफ अटैचमेंट इज कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस है उसका ये है प्लेटफॉर्म, कॉन्शियसनेस वो आसक्ति का प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए जब हम कॉन्शियसनेस को भगवान के भक्तों के प्रति लगा देते हैं तभी मुक्ति का द्वार बन जाता है। तो एक शुद्ध भक्त या साधु के प्रति आसक्ति लगाने से व्यक्ति बंधन से मुक्त होता है। तो शास्त्र में ये भी बताते हैं कि ये साधु के बारे लक्षण क्या है, ये भी बताते हैं। तो प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं, तो ये साधु ऐसा नहीं है कि कोई सैफ्रन कपड़ा पहनता है और बड़ा लंबा दाढ़ी रखता है, ऐसा साधु नहीं है। तो भक्ति विकास महाराज एक बार प्रवचन करते समय बोल रहे थे कि आजकल ऐसा साधु को देखते हैं, भगवा कपड़ा पहनते हैं, लंबा दाढ़ी, लंबा मूंछ और बीच में छोटा सा होल होता है, उसमें से केवल नॉनसेंस निकलता है। तो ये साधु नहीं है। लोगों को साधु के बारे में जो मिसकंसेप्शन है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि साधु मतलब कौन है, तो साधु मतलब अनफ्लिंचिंगली एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस। तो मतलब उस इज अ स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो अनफ्लिंचिंग मतलब भगवान का सेवा में सतत निरत रहता है। तो इवन दो वन इज फाउंड नॉट टू बी फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डिवोशनल सर्विस, इफ वन सिंपली हैज अनफ्लिंचिंग फेथ इन कृष्णा द सुप्रीम, ही इज अंडरस्टूड टू बी ए साधु। तो प्रभुपाद जी श्लोक अभी कोट करते हैं, अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। इफ एट ऑल वन वांट्स टू रिलीज, वन वांट्स टू रियलाइज ब्रह्मन और स्पिरिचुअल परफेक्शन, ही हैज टू ट्रांसफर हिज अटैचमेंट टू साधु। अगर साधु जो अभी हम प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं, तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका में जब गए थे तो वहां के लोग फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल पूरा का पूरा ब्रेक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भगवान का नाम भी नहीं सुना था और भगवान का बारे में कोई गीता भागवतम भी पढ़े नहीं थे। केवल एकमात्र चीज उन्होंने किया कि श्रील प्रभुपाद जी के प्रति जो आसक्ति उन्होंने बढ़ाया, तो केवल उतना करने मात्र से, प्रभुपाद जी के प्रति आसक्ति बढ़ाने से वो ऐसे साधु बन गए, आज हम देखते हैं कि पूरे जगत का उद्धार कर रहे हैं। तो कई सारे प्रभुपाद जी के उदाहरण आप सब जानते ही है, तो कैसे भगवान के भक्ति का जो चावी है वो शुद्ध भक्तों का हाथ में होता है। तो वो शुद्ध भक्त जिसको ये शुद्ध भक्ति देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, भगवान उनके हवाले बन जाते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि वो कौन सा बैकग्राउंड से आए हैं, सो उनका पिछला बैकग्राउंड क्या है, कुछ नहीं देखते हैं। तो एक शुद्ध भक्त के हाथ में भगवान शुद्ध भक्ति का चावी देते हैं। तो अगर उस शुद्ध भक्त के प्रति अगर कोई आसक्ति बढ़ाता है तो वो भी शुद्ध बन जाता है। तो भगवान का ये असीम कृपा है। तो भगवान अपने पास भी ये चाबी न रखते हैं शुद्ध भक्त के हाथ में। इसलिए जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि एक शुद्ध भक्त के प्रति आसक्ति बढ़ाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, आजकल हमने इस्कॉन जो संस्था को खोले हैं, ऑल्दो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट टू अपलिफ्ट द ह्यूमन सोसाइटी, स्टिल पीपल आर नॉट सीरियस। तो इतना शुद्ध संस्था है, चेतना को ऊपर उठाने के लिए, भगवान का भक्ति करने के लिए इतना शुद्ध संस्था है, फिर भी लोग इसके प्रति आसक्त क्यों नहीं रखते हैं? लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसाक्तानाम तया अपहरत चेतसाम व्यवसायत्मिक बुद्धि समाधौ न विद्यते। तो आजकल का जो सिविलाइजेशन है, प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो सिविलाइजेशन है ये सेंस ग्रेटिफिकेशन वाला सिविलाइजेशन है। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हाईएस्ट चीज बनाएंगे, हर चीज में एक्सपर्ट है, इंद्र तृप्ति करने के लिए क्या क्या चीज उन्होंने निकाल के रखा है। तो प्रभुपाद जी एक क्लास में बताते हैं कि जैसे कि आजकल हम लोग काफी बार बोलते हैं कि रेजर्स एज है ना, रेजर्स एज। तो रेजर्स एज मतलब क्या है? तो रेजर के एज के ऊपर थोड़ा सा ये हाथ लगाते हैं तो कट जाता है। तो शास्त्र में ये सारे एग्जाम्पल देते हैं, लोग आजकल के लोग समझ भी नहीं पाते रेजर एज क्या होता है, क्योंकि तो आजकल ये लोग होलोग्राउंड रेजर बनाया है। तो प्रभुपाद बोलते होलोग्राउंड रेजर तो कभी कटता नहीं, रोज दाढ़ी बनाएंगे, एकदम फट 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 दाढ़ी बनाएंगे, कभी कटता नहीं, कभी उनको समझेगा ये शास्त्र का। तो होलोग्राउंड रेजर, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया कि लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। लेकिन अगर एक लवमात्र थोड़ा सा भी, अल्प से अल्प भी अगर साधु के प्रति अटैचमेंट बढ़ाते हैं तो उनका मुक्ति का द्वार खुल जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अटैचमेंट टू साधु इज अटैचमेंट टू सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो अगर साधु के प्रति आसक्ति बढ़ाते हैं तो साधु के प्रति आसक्ति मतलब भगवान के प्रति आसक्ति के समान। इसी गौरनिता है भगवान की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो साधु के प्रति आसक्ति मतलब भगवान के प्रति आसक्ति के बराबर है, क्योंकि साधु के पास जाते हैं तो साधु यही सिखाता है कि कैसे भगवान का भक्त बनना चाहिए और कैसे भगवान का एक वर्शिप करना चाहिए और कैसे एक सिंसियर सर्विटर, भगवान का सेवक बनना चाहिए, यही सिखाता है। तो साधु से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि हमारा मेटेरियल कंडीशन को सुधारने का वर नहीं मांग सकते हैं, और रैदर साधु इंस्ट्रक्ट्स ऑन हाउ टू कट द नॉट ऑफ मेटेरियल कंटेमिनेशन एंड मेटेरियल अट्रैक्शन एंड हाउ टू एलिवेट ऑन डिवोशनल सर्विस। साधु यही सिखाता है कि कैसे भौतिक सुख सुविधा को कैसे काटना है, ये नहीं कि बढ़ाना है ना। तो भौतिक जगत में अगर कोई किसी का बीमारी है तो बुकर है, बुकर को बढ़ाना नहीं है और घटाना है। तो एक अगर सही वैद्य है वो ये नहीं बताएगा कि कैसे बुकर को बढ़ाना चाहिए, वो तो हमेशा बुकर को घटाने के बारे में बताएगा। तो ये भौतिक जगत में जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहता है, और एज लॉन्ग एज वन डज नॉट एनक्वायर अबाउट स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ लाइफ, वन इज डिफीटेड एंड सब्जेक्ट टू मिजरीज अराइजिंग फ्रॉम इग्नोरेंस। क्योंकि उनका माइंड है, जो मन है इम्प्योर है, इम्प्योर माइंड है तो उनका कॉन्शियसनेस, क्लियर कॉन्शियसनेस नहीं रहता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ नहीं समझता है, क्योंकि माइंड इम्प्योर है, इम्प्योर माइंड के द्वारा वो समझ नहीं सकते हैं। तो जब तक वो कर्मकांड में लगा रहता है तो हमेशा उनको बारंबार ये भौतिक शरीर को स्वीकार करना पड़ता है। तो भगवद गीता में बताते हैं कि यथेन्द्रसी समुद्योग्निर् भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। तो जैसे एक यज्ञ कुंड में, यज्ञ में हम समिध ये जो लकड़ी डालते हैं तो वो जलाकर राख देता है, राख कर देता है, उसी प्रकार जो भगवान के भक्तिमय ज्ञान के द्वारा हमारा सारे कर्म है नष्ट हो जाता है। तो ये इसके लिए हमें एक साधु के पास जाना बहुत जरूरी है। तो पुराण में ऐसा लिखा है कि ये संसार विष वृक्षस्य द्वे फले हि अमृतोपमे। तो संसार नाम के ये जो वृक्ष है ये विष वृक्ष बताया है, विष मतलब जहर से भरा हुआ है। हालांकि ये संसार नाम के जो वृक्ष है विष वृक्ष है, फिर भी उसमें दो प्रकार के अमृतमय फल उगता है। बताता है कि कदाचित केशवे भक्ति तद भक्तिर व समागम, मतलब दो अच्छा फल निकलता है। हालांकि संसार में विष वृक्ष है तो अमृतमय फल, वो क्या है, एक तो केशव भक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्ति, और तद भक्तेर वा समागमा, दूसरा उन भक्तों का, उनका भगवान के भक्तों के समागम, ये दो ही उसमें ये चीज है। भौतिक जगत में अगर हम रह रहे हैं, दूसरा कितना भी मेटेरियल फैसिलिटी हासिल करके उसमें कभी भी सुखी होने वाला नहीं है, जब तक केशव भक्ति या कृष्ण भक्ति और भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति नहीं बढ़ाते हैं तो इस भौतिक जगत में पराभवस्तावत अभूत जातो यावन न जिज्ञास आत्मतत्व, जब तक आत्मतत्व को स्वीकार नहीं करते तो एक हमेशा पराभव रहता है। तो बताते हैं कि गंगा पापम शशि तापम दैन्य कल्प तरुर हरति, पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। मतलब यहां पर बताते हैं कि गंगा पापम, गंगा के पास जाते हैं तो गंगा पाप को हर लेती है, और शशि तापम, शशि तापम रात को हम देखते हैं कि कल रात को हम देख रहे थे बहुत सारे लोग 9 बजे के समय में सब लोग दिया लगा रहे थे, तो वहां पर सब लाइट बंद किए थे, सब जगह एकदम कूल है ना, और कूल मतलब ऊपर देखते हैं कि शशि मतलब चंद्रमा का जो प्रकाश, इतना कूलिंग था। तो चंद्रमा जो है वो ताप को हर लेता है, गंगा पाप को हर लेती है, चंद्रमा ताप को हर लेती है, और दैन्यम कल्प तरु हरती, मतलब जो कल्प तरु जो कल्प वृक्ष के पास जाते हैं तो उनके पास जाने से जो चाहिए वो मिल जाएगी। तो जो गरीब है व्यक्ति वो धनी बस व्यक्ति बन सकते हैं। तो गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरु हरति, पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम, ये तीनों चीज साधु के पास जाने से एकदम खत्म हो जाता है। अलग अलग चीज के पास जाने के, केवल भगवान के भक्तों के पास ये पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। ये सारे वैदिक सिविलाइजेशन है, भौतिक कष्ट को मिटाने के लिए है। तो शास्त्रों में, ये वैदिक शास्त्रों में बताया गया कि कैसे ये बंधन को काटना चाहिए और शुद्ध भक्ति करके जीवन में मुक्त होना चाहिए, इसके बारे में बारंबार ज्ञान दिया गया है। तो कई सारे लोग हैं शास्त्र अध्ययन करते हैं तो फिर भी भगवान का शेल्टर वो नहीं ले पाते। प्रभुपाद जी बोलते हैं ईशतंत्र्याम गुरुदामनी बद्धा, तो प्रकृति का तीन गुणों से वो बंधे रहते हैं। तो अनलेस वन टेक शेल्टर ऑफ फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस स्पिरिचुअल मास्टर देर इज नो चांस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कृष्ण। कितना भी शास्त्र अध्ययन क्यों न करे तो एक्सपर्टली श्लोक कोट करते हैं वो सारे एक्सपर्ट क्यों नहीं बने, लेकिन जब तक एक शुद्ध भक्त का शरण ग्रहण नहीं करते तब तक वो कृष्ण को समझ नहीं सकते। नायम आत्म प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन ऐसा प्राप्त नहीं होता है कि एकेडमिक एजुकेशन के द्वारा और प्रेजेंटिंग लेक्चर इन एरोडाइट वे और बाय बीइंग इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, सो वन कैन नॉट अटेन द सेल्फ रियलाइजेशन। थ्री थिंग्स ही सेड, नाइदर बाय एकेडमिक एजुकेशन नॉर बाय प्रेजेंटिंग लेक्चर इन एरोडाइट वे और थर्ड बाय बीइंग इंटेलिजेंट साइंटिस्ट। ओनली व्हेन सरेंडर्ड अनटू प्योर डिवोटी, जब तक शुद्ध भक्त के पास जाके शरण ग्रहण नहीं करते तब तक वो सेल्फ रियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम फ्री फ्रॉम क्लचेस ऑफ माया। तो महात्माओं के लक्षण के बारे में बताते हैं, पहले क्या करना चाहिए, महात्मानस्तु पाम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रित भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। सारे महात्मा जन क्या करते हैं तो भगवान का अनन्य भाव से सेवा करते हैं, भजन्ति अनन्य मनसो, तब जाकर वो क्या करते हैं ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, वो समझते हैं कि भगवान आदि है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो जब भगवान का भक्ति को स्वीकार करते हैं तो क्या होता है, तो सारे उत्तम गुण अच्छे गुण देवताओं के गुण उनके जीवन में समा जाते हैं। जैसे शास्त्र में बताया यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरः। तो जब श्वेताश्वतर उपनिषद में भी बताते हैं कि यस्य देवे पराभक्ति यता देवे तता गुरु तस्यैते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। सब शास्त्र, सारे शास्त्र का जो मर्म उन्हीं व्यक्ति को प्रकट होता है जो व्यक्ति भगवान के ऊपर जितना विश्वास या श्रद्धा रखता है उतना ही आसक्ति, उतना ही श्रद्धा, उतना ही विश्वास अगर गुरु के प्रति रखता है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। तो ऐसे महात्माओं को ही ये लाभ होता है। तो भगवान सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, वो जिनके पास जाना चाहते हैं उन्हीं के पास जाते हैं, तो जो जिनको चुनते हैं उनके पास जाते हैं। तो उन्हीं व्यक्ति को भगवान अपने असली रूप को दर्शाते हैं। यम एवैष वृणुते तेन लभ्यस तस्यैव आत्मवृणुते तनुं स्वाम। तो ये सारे वैदिक इंजंक्शंस है। तो हर जगह में यही बताते हैं कि वन मस्ट टेक शेल्टर ऑफ सेल्फ रियलाइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर, नॉट ए मेटेरियली एजुकेटेड स्कॉलर और पॉलिटिशियन। तो व्यक्ति को बताया गया कि कोई आत्म साक्षात्कारी पुरुष का शरण लेने के लिए बारंबार सब शास्त्र में ही यही बताते हैं। असार भूत संसारे सारम एतद् आत्मज भगवत भक्त संगश्च हरिभक्ति तितीक्षत। तो ये बृहन्नाथ नारदीय पुराण में भी यही बताया गया कि आसार भूत संसारे सारम एतद् आत्मज, मतलब ये आसार भूत संसार, मतलब या ये संसार में कोई सार नाम की चीज नहीं है। तो आसार भूत संसार बताया गया, ये भौतिक जगत को असार भूत संसार बताया गया। फिर भी सारम एतद् आत्मज, वहां पर सार क्या है, भगवत भक्त संगश्च हरि भक्ति तितीक्षत। तीन चीज बताया गया, एक भगवत भक्त संग, हरि भक्ति और तितीक्षा। तो तितीक्षा मतलब टॉलरेंस। तो ये तीन चीज ही यहां पर बताया है। तो जो व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है, हरि भक्ति करता है, भक्तों का संग में रहकर, और तितीक्षा, और इस भौतिक जगत में कितना भी सुख या दुख है, ये दोनों टेम्पररी है, क्योंकि शरीर ही फॉल्स है, शरीर ही ये टेम्पररी है। तो और सुख और दुख के पीछे दौड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सुख मिलेगा तो वो भी टेम्पररी, दुख मिलेगा वो भी टेम्पररी है। इसलिए भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगम पायन अनित्य ताम तितीक्षस्व। केवल उसको टॉलरेट करो, इस भौतिक जगत में कुछ ना कुछ तो तकलीफ आते ही रहता है। तो कुछ तीन प्रकार का बताते हैं कि आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक क्लेश हमेशा सताते रहेगा। तो प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं, मैं रामायण में पढ़ रहा था, शील प्रभुपाद सेज इन वन परपोर्ट, व्हेन वन इज डिस्ट्रेस्ड ही गोज टू चर्च और टेम्पल टू वर्शिप द लॉर्ड, बट व्हेन ऑपुलेंट ही फॉरगेट्स द लॉर्ड, देयरफॉर पनिशमेंट बाय द लॉर्ड थ्रू मेटेरियल नेचर इज नेसेसरी इन ह्यूमन सोसाइटी, फॉर विदाउट इट मैन फॉरगेट द लॉर्ड ड्यू टू देयर डल एंड ब्लंट इंटेलिजेंस। तो हम देखते हैं सब लोग है यहाँ पर कोरोना में सफर कर रहे हैं, तो भगवान क्या करते हैं, कुछ लोगों को जगाते हैं। कैसे, तो कुछ ना कुछ तो ऐसे भौतिक मिजरीज वगैरह आता है ताकि लोग भक्ति को सीरियसली लेंगे। तो ये भगवान का विशेष प्लान रहता है। तो ये आता है जब भगवान श्री रामचंद्र समुन्दर के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए जाते हैं। तो भगवान को ब्रिज बनाने की जरूरत नहीं था ना, भगवान बिना ब्रिज के भी रावण को जाके मार सकते थे। तो भगवान ने ऐसा ब्रिज बनाया, समुन्दर के ऊपर ब्रिज बनाए, और कोई सीमेंट नहीं, कोई रॉड नहीं, कुछ नहीं, केवल पर्वत को और पत्थर को पानी के ऊपर तैराए, और कोई इंजीनियर लोगों का जरूरत नहीं पड़ा, मंकीज के द्वारा, बंदरों के द्वारा भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं मैंगलोर में था, तो मैंगलोर में एक ब्रिज को तोड़ रहे थे। मैंने पूछा ये ब्रिज को तोड़ क्यों रहे, अच्छा खासा है, कुछ हुआ नहीं? तो बोलते कि ये ब्रिज ब्रिटिशों ने बनाया है और ब्रिटिश लोगों के पास सारे रिकॉर्ड है, तो उन्होंने कब कब कौन सा ब्रिज बनाया है उसका सब रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्री करके रखा है। अभी उनका आदेश आया है इसको तोड़ना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है ड्यू डेट कब गिरने वाला, सब उनको पता है, इसलिए उनका आदेश है तोड़ना है। तो मतलब सब कुछ वो पूरा कैलकुलेशन करके सब कुछ बनाते हैं, तो फिर भी तोड़ना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर देखते हैं भगवान ने ऐसा ब्रिज बनाया समुन्दर के ऊपर, तो समुन्दर के पास जाने से पहले भगवान श्री रामचंद्र ने 3 दिन उपवास किया और उनको प्रार्थना कर रहे थे, तो समुद्र आ नहीं रहे थे। तब भगवान ने क्या किया, वो सारे समुद्र को जलाकर राख करने के लिए सोच रहे थे, तब जाके ये आ गए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो भौतिक जगत में जो एनिमल, प्रभुपाद बोलते हैं कि विदाउट बीइंग बीटन एन एनिमल कांट अंडरस्टैंड, जड़ा दिया, डल हेडेड, when punished by material nature they begin to अंडरस्टैंड. तो जैसे जानवर जैसे लोग है वो ये समझ नहीं पाते. तो कुछ लोग अभी बहुत सीरियस हो गए हैं, अभी भगवान के पास आते हैं. मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि जिनका कॉल कभी नहीं आ रहा था अभी आ रहे हैं. तो बोलते हैं आप लोग अभी ये होप से अभी हम कुछ नहीं कर सकते. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दुख से सब हरि बजे, सुख से बजे ना कोई, सुख से अगर हरि बजे दुख कहाँ से हो. तो लोग दुख आता है तो भगवान का शेल्टर लेते हैं, जो सुख आते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं. तो अगर सुख में भी भगवान का नाम लेते हैं तो दुख कहां से आएगा. दुख इसलिए क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं और शरीर का जो संबंधी दुख को दुख मान लेते हैं. तो लेकिन जो आत्मा भगवान के अंश है, भगवान नित्य सुखी है, तो आत्मा के स्तर पर कोई भी दुख भी नहीं, सुख भी नहीं है, ये आनंद है. हरि पूजा परा यत्र महंत शुद्ध बुद्धया तत्रैव सकलम भद्र यता निम्ने जलम द्विजा. यहां पर बृहन नारद पुराण में भी यही बताया गया कि हरि पूजा परा यत्र महंत शुद्ध बुद्धया, जहां पर हरि पूजा, जहां पर भगवान के भक्ति है, तत्रैव सकलम भद्र, वहीं पर जो अच्छा भद्र मतलब ऑस्पिशियसनेस रहता है, तो केवल उधर ही रहता है. बताते हैं कि यहाँ पर एनालॉजी भी दिया जाता है, ये जो पानी बहते जाता है बारिश के समय में वह कहाँ समा जाता है, निम्ने जलम. तो जहाँ, तो बोलते हैं कि जो ऊपर का जो खेत होता है, गांव में रहने वाले लोगों को पता है, खेती करने वाले को पता है. तो आजकल जब ये मशीन्स आया है, मोटर आया है, पानी ऊपर ऊपर चढ़ाते हैं. तो पहले जमाने में खेती करते थे, खेती तीन टाइम फसल उगता था. तो लेकिन ऊपर वाला खेती है वहां पर एक ही खेती, एक ही बार फसल उगेगा, क्योंकि ऊपर चढ़ाना बहुत मुश्किल है. लेकिन नीचे का जमीन है, आसान से वो खेती कर सकते हैं, क्योंकि पानी लगाना बहुत आसान है, वो अपने आप चले जाता है. तो उसी प्रकार बताते हैं कि हरि पूजा परा यत्र महंता शुद्ध बुद्धा तत्रैव सकलम भद्र. तो हरि पूजा और हरि भक्ति जहां रहता है और भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उन्हीं के पास ये सारे ऑस्पिशियसनेस रहता है. तो एक दूसरी आदि पुराण में भी बताए, साधु संगत विमला भक्तिर भवति नैष्टिकी, भक्ति भक्तिर एव परो लाभस ततो अन्य नास्ति किंचना. साधु संग में जाते हैं तो साधु विमला भक्ति मतलब नैष्टिकी भक्ति, शुद्ध भक्ति कैसा करना है ये सिखाते हैं. तो वहां पर साधुओं के पास जाने से कोई भौतिक सुख सुविधा मिलने वाला नहीं है, वहां पर केवल शुद्ध भक्ति ही मिलने वाला है, अन्य नास्ति किंचना, दूसरा कुछ भी नहीं मिलने वाला है. तो अगर साधु के पास जाके मेटेरियल बेनिडिक्शन के लिए जाएंगे, वो मेरा अच्छा घर मिलेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अच्छा सुख मिलेगा, सुविधा मिलेगा, पोस्ट पोजीशन मिलेगा, या कुछ अच्छा नौकरी मिलेगा, ये चीज लेके साधुओं के पास जाएंगे तो गलत रास्ते में. अगर आपको बॉम्बे जाना है तो कोल्हापुर का गाड़ी बैठे हैं तो उल्टा जाएंगे, तो वहां पर कुछ मिलने वाला है. तो वहां पर जाएंगे तो केवल एक ही चीज मिलने वाला है, वो नैष्ठिक की भक्ति, शुद्ध भक्ति मिलने वाला है, दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला है. तो सत्संग विवेकश्च निर्मला नयनम द्वयम, मतलब जो दो आंखें हैं, एक है सत्संग और विवेक, तो ये दो निर्मल नयन है. अगर जिसके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, और जिसके पास सत्संग नहीं है, ये अंधे हैं. तो ये सत्संग जो मिलता है ये बहुत ही रेयर चीज है, इतना आसानी से नहीं मिलता है. तो हरति हृदय बंधम कर्म पाशातिनाम वितरति पदमुच्चेर अल्पजलेर अल्पजल्पैर का भाजम जन्म मरण कर्म श्रांति विश्रांति हेतुर त्रिजगति मनुजानाम दुर्लभ सत्संग. तो सत्संग बहुत ही रेयर है, तो इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है. ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भर में घूम फिर के अंत में उसको सत्संग प्राप्त होता है, इतना आसानी से नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि हरति हृदय बंधम, हृदय का बंधन को काटने वाला है, कर्म पाश को काटने वाला है, वितरति परम उच्चेर, तो उच्च पद को भक्ति का पद को प्राप्त करने वाला है। जो व्यक्ति अल्प जलपेर का वाजम, मतलब कम बात, भौतिक बात कम करके आध्यात्मिक बात को ज्यादा करते हैं, तो ऐसे लोगों का जन्म मरण के चक्कर में जो थके हुए और भगवान का भक्ति को स्वीकार करते हैं, ऐसा जो भगवान के भक्तों का संग है तीनों जगत में मनुकुल में दुर्लभ है बताया गया है। तो ये जो वैष्णव जो भक्त होते हैं तो वो खुद भी अच्छे से अच्छे भक्ति करते हैं और वो देखते हैं कि अपने जीवन में भक्ति करके इतना सुख और शांति प्राप्त हुआ है, वो अपने ही सुख और शांति में बैठते नहीं है। तो वो देखते हैं कि दुनिया के लोग भी ये भौतिक जगत में आने के बहुत बहुत दुख का अनुभव कर रहे हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, तो दूसरों को भी सुखी बनाने का प्रयास करते हैं। तो वैष्णव का बारे में हरि भक्ति विलास में रूप गोस्वामी पाद भी बताते हैं, पर दुखे नात्म दुखम मन्यते ये नृपोत्तम भगवत धर्म निरत निरातास्ते नरा वैष्णव नृपा। तो वैष्णव का ये डेफिनेशन बताते हैं यहाँ पर दुखेन आत्म दुखम मन्यते, दूसरों का दुख को अपने दुख मानने वाले यही वैष्णव है। भगवत धर्म निरत निरता नास्ते नरा वैष्णवान रूपा। तो भगवान के भक्तों के संग में रह के भक्ति करके तो उत्तमई सह संगत्यम पंडितई सह सत्कथाम अलब्धे सह मित्रत्वम कुर्वाणो न अवसीदति। तो जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि उत्तम भक्तों का संग, जीवन मनुष्य जन्म मिला है भगवान का शुद्ध भक्ति करने के लिए, ये मनुष्य जन्म दुर्लभम मानुषम जन्म, बहुत ही दुर्लभ मिला है मनुष्य जन्म, उसमें भी भगवान का भक्ति मिलना, पहले बात तो मनुष्य जन्म मिलना भी बहुत कठिन है 84 लाख में बारंबार घूमने के बाद, एक बार नहीं बार बार 84 लाख कितना बार हमने घूमा है उसका कोई भी काउंट नहीं है। तो समहाउ कैसे भी तो अभी मनुष्य जन्म मिला है और उस मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी एक शुद्ध भक्तों का संगत में आना बहुत कठिन है। हम सबका बहुत ही सद्भाग्य है जैसे एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के जैसे एक शुद्ध भक्त का सत्संग में हम आते हैं, उनके ग्रंथ हम पढ़ते हैं और अभी तो सभी भक्त अच्छा पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। अभी कोरोना का वजह से लोगों को अच्छा समय भी मिल रहा है, पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो अच्छे से अच्छा पढ़ाई कीजिए तो भगवान की विशेष कृपा है। अगर मैराथन के टाइम में कोरोना आता था तो लाखों लोगों के पास भगवान के कृपा नहीं मिलता था, तो अभी पूरा वो खत्म होने के बाद आया था कि लोगों के पास ऑलरेडी बुक पहुंच गया है, तो अभी पढ़ेंगे। तो अभी हम आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगले सितंबर से पहले कोरोना पूरा खत्म हो जाए ताकि नेक्स्ट। तो अभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने आप को तैयारी कीजिए, हालांकि नेक्स्ट मैराथन में हम अच्छे से भाग लें। जो भक्ति अभी हम जो भगवान का गीता भागवत को अध्ययन करने से हम जो सुख और शांति को अनुभव कर रहे हैं वो ऐसे दुनिया में हम देख सकते हैं कि नॉट इवन 1% हैव बिकम डिवोटीज। तो इतने सारे लोग हैं दुखी है क्योंकि एकमात्र कारण है उनके जीवन में एक साधु श्रील प्रभुपाद जी इनका ग्रंथ पहुंचा नहीं है और उनका शुद्ध भक्ति का ज्ञान पहुंचा नहीं है। ये हम सब का आद्य कर्तव्य है कि उनके पास जाके उनको भी सुखी बनाना है। ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की।
स्वीकार किया है उनके शिष्य के रूप में, और उनका प्रयास करने की हम प्रयास कर रहे हैं। तो हम श्रील प्रभुपाद जी के उदाहरण से हम देख सकते हैं, तो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के प्रति आसक्ति बढ़ाए हैं उनके द्वारा श्रवण करने से। तो प्रभुपाद जी का एक विशेष गुण था, तो प्रभुपाद जी का जो प्रवचन, प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के प्रति जो प्रवचन है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने इसको रिकग्नाइज किया। तो जब भी मैं प्रवचन करता हूं वो पहला लाइन में बैठता है और सुनता है, तो मैंने उसको पहले से आइडेंटिफाई किया है। तो वो श्रवण करने से क्या होता है, अभी साधु के प्रति आसक्ति बढ़ाना मतलब क्या है, साधु के द्वारा श्रवण करना है। तो श्रवण करने से हम साधु के प्रति अटैचमेंट बढ़ा सकते हैं, और केवल श्रवण करके भूलना नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारने से क्या होता है, उसका रियलाइजेशन आता है, एक ज्ञान है। तो ज्ञान को विज्ञान के रूप में कन्वर्ट करना है तो वो ज्ञान जो सुना है उसको जीवन में उतारना चाहिए। जब उतारते हैं तो रियलाइजेशन के रूप में वो प्रकट होता है। तो इसलिए जब कोई भी साधु के प्रति आसक्ति बढ़ाना मतलब ये पहले बात तो सुनना है, और सुनने के बाद इसके अनुसार सेवा भी करना है। तो जब सेवा करते हैं तो रियलाइजेशन आएगा। ये रियलाइजेशन मतलब अभी मैं तो कोई रियलाइज्ड सोल नहीं हूं, तो रियलाइजेशन मतलब हम जब सेवा करते हैं, फॉर एग्जांपल है, तो हम भी आप क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपने अपने गुरु के प्रति आसक्ति कैसे बढ़ाया है, तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का जो प्रणति मंत्र हम बोलते हैं उसमें हम एक ये करते लाइन उच्चारण है, प्रभुपादस्य साहित्यम या प्रकाश वितीर्य च, एक श्लोक हम रोज उच्चारण करते हैं। तो जब भी हम महाराज का प्रणति मंत्र उच्चारण करते थे बार बार उच्चारण करते हैं कि प्रभुपादस्य साहित्यम या प्रकाश वितीर्य च प्रचारम कृतवान साधु भगवत पदायतन, वो महाराज का ये प्रणति मंत्र है। तो महाराज के प्रति हम ये श्लोक बारंबार उच्चारण करते हैं, और कि महाराज अपने गुरु श्रील प्रभुपाद जी के प्रति जो आसक्ति रखे हैं तो उसको देखते हैं। तो रिसेंटली एक जगह पर मुझे गोपाल कृष्ण महाराज एक प्रवचन कर रहे थे, तो प्रवचन में एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा कि कुछ रामायण के रिलेटेड जो रामायण मतलब भागवतम में लिखा नहीं है, तो महाराज को पूछा कि ये इसके बारे में थोड़ा वर्णन कीजिए। तो महाराज ने बोले ये प्रभुपाद जी ने मैंने लिखा नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, सिंपल। तो प्रभुपाद जी ने इसके बारे में कुछ लिखे नहीं इसलिए मैंने पढ़ा नहीं है, और सीधा उदाहरण बता, महाराज बता सकते थे अभी महाराज तो रामायण है नॉर्थ इंडियन सब लोग जानते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने नहीं बताया तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। तो प्रभुपाद जी के प्रति उनका जो आसक्ति है हमने देखा है, महाराज बार बार जाते हैं, जैसे कि बताते हैं जो रेमुणा का पास टाइम, रेमुणा में मतलब वहां पर कीरचोर गोपीनाथ का पास टाइम है ना, हर बार कितने बार महाराज बताए होंगे लेकिन कभी भी महाराज कीरचोर गोपीनाथ मंदिर में कभी नहीं गए। तो एक प्रभुपाद के मंदिर से दूसरा प्रभुपाद का मंदिर जाते रहते हैं, लेकिन समाव लास्ट ईयर एक यात्रा इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, तो 5-6 हजार भक्तों का यात्रा ऑर्गेनाइज, पहली बार महाराज वहां पर गए, वो एक कीरचोर गोपीनाथ और एक नाथ द्वारा जहां पर माधवेंद्रपुरी का जो गोपाल विग्रह वहां पर है, वहां पर भी महाराज कभी नहीं गए, एक ही बार गए जब वो यात्रा का ऑर्गेनाइज किया था गया था, तो महाराज नहीं तो नहीं गए। तो प्रभुपाद जी अपने गुरु के प्रति वो जो उनका अट्रैक्शन है वो हम देख सकते हैं कि जो उनके गुरु महाराज ने किया है या उनको आदेश दिया है वही करते हैं। तो रामायण में भी यहाँ पर हमने सुना है जो सीता माता के प्रति वहां पर बताया जाता है कि सीता जो है वो चेस्ट लेडी थी, और जब मंडोदरी है वो दूसरा चेस्ट लेडी है. वन चेस्ट लेडी कैन अंडरस्टैंड द अनदर चेस्ट लेडीज पावर. सो अगर हम सेवा करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जो है अपने गुरु के प्रति वो जो अट्रैक्शन रखे थे. तो प्रभुपाद जी जो महान भक्त थे तो प्रभुपाद जी ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जो हम नहीं कर सकते. प्रभुपाद जी ने कोई जादू करके नहीं दिखाया. प्रभुपाद जी बहुत सिंपल चीज हमको दिए हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम दिए हैं और गीता भागवतम दिए हैं. प्रभुपाद जी का ग्रंथ अध्ययन करना है, प्रभुपाद जी के मंदिर में रहकर हमको सेवा करना है और प्रभुपाद जी ने जो बताया वही कार्य हम करना है. हम देखते हैं राधेश्याम प्रभु तो उनके अटैचमेंट है जो प्रभुपाद जी के प्रति है, उनके गुरु के प्रति, और वो हमारे बीच में ही घूमते रहते हैं, ही भक्ति कर रहे हैं. और वो कितना हम देखते हैं कि सवेरे जल्दी उठते हैं ना, हम तो उठते हैं 4 बजे लेकिन प्रभु जी बहुत जल्दी उठते हैं, 1-1.5 घंटा पहले ही उठते हैं और पूरा ग्रंथ अध्ययन करते हैं. हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी का जो लेक्चर जब स्नान करते समय भी बीच में सुनते हैं. ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कृष्ण भावनामृत नहीं है. 24 आवर कृष्ण कॉन्शियस है. तो हम ऐसा नहीं कि वो बहुत मतलब पुराने जमाने में हो सकता है, अभी नहीं हो सकते. हमारे आंखों के सामने उदाहरण है, जस्ट उनको फॉलो कर सकते हैं. वो जो कर रहे हैं हमको कर रहे हैं और कोई अलग चीज करना नहीं है. हरे कृष्ण. राधेश्याम प्रभु कैन ऐड सम.
जय सलक्षण प्रभु की, चला प्रभुपाद की.